जो साधक साधक सुनो, यहां पर ये कह के आते हैं कि हमें साधना के लिए श्री राम शरण जाना है, मिलने के लिए जाना है, दीक्षा के लिए जाना है, दीक्षा के लिए किसी को साथ लेके आना है, इत्यादि इत्यादि। कुछ का तो हमारे पास प्रमाण होता है, लेकिन कोई कहे कि हमें साधना के लिए वहां पहुंचना है तो हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। पूछते हैं तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि वे पूछते हैं तो गुस्सा करते हैं लोग कि हमें पूछा जा रहा है। हम उनकी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। यदि यहां आके पता लगता है कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ठीक नहीं दी, गलत दी है, तो मैं समझता हूं कि वे स्वयं अपराधी हैं, कोई भी हो। झूठ बोल के तो उन्होंने यहां इजाजत ले ली, आए हुए तो किसी और काम के लिए हैं, लेकिन कहा कि हमें साधना करनी है। उदाहरणतया जैसे किसी को एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करना है या छोड़ना है, आए तो वे इस काम के लिए हैं, पर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमें सुबह का सत्संग अटेंड करना है या मत्था टेकना है। कौन सी बात सच्ची होगी, आदमी क्या करे? साधक ईमानदार ना होगा, सामान्य व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो शायद परमात्मा इस बात को सहन कर लेता होगा, लेकिन साधक ईमानदार नहीं है तो परमात्मा के लिए भी ये बात सहन करनी और क्षमा करनी कितनी कठिन होती होगी। बड़े शर्म की बात है, एक साधक होके भी तो ईमानदार नहीं हो सका। मेहरबानी करके साधक चुनो, जिन विचारों की यहां ड्यूटी लगी हुई है, डोंट पुट देम इनटू एन ऑकवर्ड पोजीशन। बच्चे हैं बेचारे, क्या करेंगे वे? आपका ऐसे लोगों का यहां आना सारे सिस्टम में हलचल पैदा कर देता है। मैं भी आंखें ऊपर उठाने योग्य नहीं रहता। आशा है कि ये आपकी सुविधा के लिए साधक जनों ये सब कुछ किया हुआ है, और यदि आप ही ने हमें असुविधा में डाल दिया तो क्या लाभ होगा? परमात्मा के साथ, परमात्मा के घर के साथ बेईमानी करनी, कैसे माफ करेगा परमात्मा आपको? पूर्ण आशा है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अपनी ओर से साधक चुनूं, जो यहाँ के प्रबंधकों ने नियम बनाए हैं, बहुत सुंदर नियम बनाए हैं। अकेली महिला घर से चल पड़ी है, पीछे जगह है उनके रहने के लिए, कहाँ रखेंगे हम अकेली महिला को? चलने से पहले अकेली महिला को सोचना चाहिए ये बात। नियमों में लिखी हुई है अकेली महिला मत आइएगा यहाँ पर। कैसी ऑकवर्ड पोजीशन में हमें डाल दिया जाता है। क्षमा करें, ये पुनः इस सब कुछ कहने की जरूरत थी, सो आपकी सेवा में अर्ज कर दी है। अर्ज कर सकते हैं देवी सज्जनों, मानना ना मानना तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर मैं भी सोचता हूं जो करेगा सो भरेगा, जो करा है भरे बिना रह तो नहीं सकोगे आप, तो भरना ही पड़ेगा। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे साधुजनों, ताकि सही कर्म कर सकें। कर्म कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये निश्चय देवियों सज्जनों बुद्धि का है। अतएव परमेश्वर से सबके लिए यही प्रार्थना है, परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, ताकि हम सन्मार्ग पर रहें, इधर उधर भटक न जाए। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में बारंबार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। आप सबके श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के तो प्रणाम अर्ज करता हूँ, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। दैनिक सत्संग में मेरी माता सज्जन, यहाँ रामायण जी का पाठ चल रहा है। कल तक हम यहाँ पहुंचे थे, प्रभु राम वनगमन की तैयारी में हैं। माँ कैकेयी ने अपना हुक्म सुना दिया है। हुक्म सुनते ही किंतु परंतु का प्रश्न करना राम ने सीखा नहीं। अतएव सब कुछ जो मातेश्वर ने हुक्म दिया उसे सहर्ष श्रीधार किया है। एक अति भारी चट्टान सिर पर पड़ी है, लेकिन प्रभु राम को झरीट तक नहीं लगी। ऐसा धारीवान व्यक्ति होना चाहिए, साधक होना चाहिए। कैसी अद्भुत सहनशीलता है, कहीं मन विचलित नहीं हुआ, अविचल है, बिल्कुल चट्टान की तराश। राजचिन्ह उतार दिए हैं वहीं पर, मानो वहीं से तैयारी शुरू हो गई है। मुझे एक क्षण भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मां का हुक्म सिर माथे पर, पिता का हुक्म मां के माध्यम से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता पास ही बैठे हुए, कुछ इन्हें कुछ चेंज करना होता तो सर्वसमर्थ है, वह कर सकते थे। मानो दोनों की सहमति है, प्रभु राम श्रद्धार्य करते हैं। सीधे मां के महल में जाते हैं, अभी अपने महल में नहीं जहां सीता प्रतीक्षा कर रही है। मां कौशल्या को चरण वंदना करने के लिए, उनकी इजाजत लेने के लिए, उनको ये सूचना देने के लिए जाते हैं। मां तो प्रतीक्षा कर रही है, प्रातराश करवाऊंगी, नाश्ता करवाऊंगी, लेकिन वहां तो बात सब कुछ उलट पलट हो गई हुई है। अतएव प्रभु राम ने मां से कहा, मां मैं अब से नाश्ता नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि जैसे हम सामान्य व्यक्ति करते हैं, मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कोई मामूली सी घटना घट जाती है तो हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का होता है, आज भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उसी घटना में हम खो जाते हैं। प्रभु राम ऐसे नहीं है। कहा, मध्यमा माँ ने मुझे वन गमन की आज्ञा दी है, मैंने उसी वक्त से अपने आप को भीतरी भीतर वनवासी स्वीकार कर लिया है। अब मैं खाऊंगा तो जंगल का भोजन जो जंगल में मिलता है, कंदमूल खाऊंगा मां, मैं ये राजसी भोजन नहीं। लक्ष्मण क्रुद्ध होते हैं, उनको उपदेश देते हैं। आखिर देवी सज्जनों, थोड़ा पीछे हटी सोच विचार करें, ये घटना घटित क्यों हुई है? सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से घटित होता है, ये तो बहुत उच्च बात है। हम अभी देवियों सज्जनों ऐसे मंच पर नहीं पहुंचे हैं, संसारी हैं, बेशक साधनरत हैं, साधना बनने की साधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बने नहीं। साधक तो वे हैं जिन्हें राम कहा जाता है। क्या हुआ है? क्या कई ऐसी थी नहीं जैसी हो गई? जो कुछ उसने किया है, जो अनर्थ कई के माध्यम से हो गया है, इसकी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। राम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस कठपुतली को नचाने वाला कौन है। अतएव सब कुछ बहुत प्रेम पूर्वक सहर्ष सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? सत्य को जानने वाले हैं। हम सत्य को जानने वाले नहीं हैं, इसीलिए भटकते फिरते हैं। हमारे साथ देवियों सज्जनों ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हमारा क्या हाल होता है? थोड़ी चर्चा इसकी और फिर राम जी के बारे में, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हो। कहते हैं देवियों सज्जनों, मंत्र के कुसंग से ये सब कुछ घटित हुआ। मंत्र को ब्लेम दिया जा रहा है। संत महात्मा कहते हैं नहीं, मंत्रा दोषी नहीं है, दोष है तो सरस्वती का, जिसने मंत्र की बुद्धि को पलटा। यहां प्रश्न उठता है साधक्षिण, मां सरस्वती ने मंत्र को क्यों चुना? सीधे कई को क्यों नहीं पकड़ा? उनकी बुद्धि को परिवर्तित क्यों नहीं किया? मंत्र को माध्यम क्यों बनाना पड़ा? संत महात्मा यहां हम सबको समझाते हैं, दुष्ट काम के लिए दुष्ट को चुनना बहुत आसान है। किसी का मर्डर करवाना हो, किसी को परेशान करवाना हो, तो गुंडे उन्हें हायर किया जाता है। मंत्र की बुद्धि बड़ी हल्की बुद्धि है, बड़ी कमजोर बुद्धि है, रोगी बुद्धि है। रोगी बुद्धि, कमजोर बुद्धि, हल्की बुद्धि कौन सी? जिनकी थिंकिंग ठीक नहीं है, सही नहीं है, जिनके निर्णय ठीक नहीं है, उनकी बुद्धि रोगी बुद्धि, मंद बुद्धि, हल्की बुद्धि कहा जाता है। आज बुखार हुआ, उसके बाद डॉक्टर लोग कहते हैं कुछ दिन के बुखार के बाद व्यक्ति के अंदर इम्यून सिस्टम बड़ा लो हो जाता है। कोई दूसरी रोग, छोटा सा भी रोग होता है तो वह पकड़ लेता है, कमजोर है। डॉक्टर लोग कहते हैं रिलैप्स हो गया, ये बीमारी लग गई, ये हो गया। क्यों? उसकी रेजिस्टेंस पहले ही लो थी, इसलिए उसके लिए दूसरी बीमारी को कैच करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप सब साथ ही रहते हो, लेकिन दूसरा रोग उसी को पकड़ता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी बहुत लो हो गई हुई है। मंत्र भी ऐसी ही है, इसलिए सरस्वती ने मंत्र को पकड़ा है। उसके अंदर इतनी ही इच्छा शक्ति को प्रबल कर दिया है, किसी भी कीमत पर कैकेयी के साथ समझौता न करना। बहुत कुछ कह रही है कैकेयी, अले मंथले, ऐसे प्यार भरे शब्दों से बोल रही है, लेकिन मंत्र टस मस नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, वही वैसा ही इंजेक्शन मंत्र ने कैकेयी को लगा दिया है, वैसी ही इच्छा उसकी भी प्रबल कर दी है। राजा दशरथ के अनेक प्रलोभनों के बावजूद, अनेक प्यार दिखाने के बावजूद भी, तरह तरह का प्यार पुचकार लाड पुचकार दिखाने के बावजूद भी कई टस से मस नहीं हो रही। हमारी हालत साजिश में क्या होती है? ऐसी विपत्ति आती है, बिजनेस में घाटा पड़ गया, मामूली बात लेते हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होता है? बिजनेस में घाटा पड़ गया, प्रमोशन रुक गई, या किसी दूसरे को, पिछले वाले को प्रमोशन मिल गई, तो हमारे दिल पर क्या बीतती है? उदासी छा जाती है, निराशा छा जाती है, रात को नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है या शराब पीनी पड़ती है, चिंतित, डिप्रेशन नाम आम सुनने में आता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, हर वक्त सोचने की प्रॉब्लम हो गई है, और कमजोर है व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेता है, कुसंग मिल जाता है तो व्यक्ति जो यूनियन इत्यादि बनी हुई होती है उनके पास जाता है, कुसंग और प्रबल हो जाता है तो कोर्ट में केस कर दिया जाता है, सत्संग मिल जाता है तो कहते हैं अरे भाई राम इच्छा जान के तो चुप रहे, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, यदि वह चाहेगा जब चाहेगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा बिन प्रयत्न भी। बहुत सबको ये आदत शराब पीने की लग जाती है, रोज पीनी पड़ती है, अपना भी बुरा हाल, अपनी सेहत खराब, जो अपने पर निर्भर हैं उनका बुरा हाल। तनिक ऐसा व्यक्ति मेरी माता और सज्जनों सोचे, सोच विचार करे, तनिक सोचे, मेरे अपनी हेल्थ तो बिगड़ ही रही है, मैं इससे दूसरों की हेल्थ जो मेरे पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, उनकी हेल्थ भी बिगड़ रही है, शारीरिक हेल्थ भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य, अध्यात्म की तो बात ही बहुत, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य उनके बिगड़ते हैं एक आदमी के कारण, क्यों? कमजोर है, उसकी बुद्धि कमजोर है, उसको मंत्रा जैसा कुसंग मिल गया है, मंत्रा उसके जीवन में आ गई है, तो अनर्थ होके रहेगा। साधक चुनू, कहानी तो ऐसी ही है, एक शराबी हमेशा अपने मित्रों से यही कहता, मैं एक पैग पीता हूं, मित्र जानते हैं कि झूठ बोलता है, आधी आधी बोतल एट ए टाइम एक बोतल भी पी लेता है, लेकिन कहता है कि मैं सिर्फ एक पैग रोज लेता हूं। मित्र कहते झूठ बोलते हो तुम, हमारे साथ पीते हो, अनेक पैग पीते हो आप, फिर एक क्यों कहते हो? कहा भाइयों मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, मैं रोज एक ही पैग पीता हूं, अनेक नहीं। ठीक है, आज तुम्हें दिखा देंगे कि तू कितने पैग पी रहा है। इकट्ठे बैठे हुए हैं शराब पीने के लिए, मित्र मंडली बैठी है, एक लिया, दो लिए, तीन चार पैग ले लिए, तो हाथ पकड़ा, तू कहता था एक, ये चौथा है। कहा नहीं मित्र, मैंने एक ही पिया है, दूसरा पैग मैंने नहीं पिया, पहले पैग ने पिया है। तीसरा पैग दूसरे पैग ने पिया है। चौथा पैग तीसरा पैग पी रहा है। एक दिन वह आएगा जिस दिन शराब शराबी को पी जाएगी, भोगी को भोग ही भोग जाता है, भोग नहीं देवियों सज्जनों भोगे जाते, वे तो बने रहते हैं, लेकिन वह भोग उस भोगी को भोग जाते हैं, संसार जानता है इस सत्य को। प्रभु राम के साथ जो दुर्घटना घट गई है, ऐसी दुर्घटना घटने पर कमजोर आदमी की क्या हालत होती है देखो। ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, चेन स्मोकर हो जाएगा। ऐसे अवसरों पर लोग साधु भी बन जाते हैं, एक झटका लगा साधु भी बन जाते हैं लोग, थोड़े समय के लिए वैराग्य जागृत होता है, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए। कैसा वैराग्य देवी, जैसे शमशान घाट जाने से जिस वक्त तक अग्नि जलती रहती है वैराग्य जगा रहता है, ट्रांजिटरी डेसिडुअस वैराग्य, मोमेंटरी वैराग्य, मुख मोड़ने की वही सब कुछ, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, अभी ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला, अभी पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, कंसाइनमेंट कहाँ है, इत्यादि इत्यादि, फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। अगले दो रविवार मेरे माता सज्जनों यही हूं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। सोचा तो था कि थोड़ा संकेत आपकी सेवा में रख दिया जाए कि जब भगवान दूर चले जाते हैं तो इसका क्या अभिप्राय होता है। हमारी तरह तो नहीं, आप यहां बैठे हैं तो आप पंजाबी बाग में तो नहीं हैं, आप जब पंजाबी बाग में होते हैं तो यहां नहीं होते, कमलानगर में होते हैं तो यहां नहीं होते, आप इस वक्त यहां बैठी हैं तो हांसी में नहीं है आप, अब यहां बैठे हैं तो सांपला में नहीं है आप। क्या भगवान का आना जाना भी ऐसा ही है जैसे हमारा? अगले रविवार को दिव्य सज्जनों करेंगे चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।